4th of November, year 2004, my wife in St. Antonio, in Texas, USA. Ya Ali Madad. Sukhi Abadro. Mola Iman Ziyada Kare. ایمان جی سلامتی دے روزی کمانے میں برکت دے دسوندی بنائے فرمان بردار مومن بنائے نیک مراد پوری کرے آپ کو دیکھ کے خوش ہوا اے جی کہو رے جیوت میں اے کہو رے جیوت میں کس کارن آیا جی نہ کی دی صاحب جینی سروا جی اے جی دنیا نو لو جیوڑو کروانے لاگو جی دنیا نے لوبھے بھر میں بھولیو جی حضر امام کے صلوات پڑھا اللہ علیہ وسلم اے مومنوں کبھی آپ نے یہ سوچا ہے پیر پوچھتے ہیں کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو مولانا امام سلطان محمد شہدتار فرمایا مومن کو لازم ہے کہ ہر روز تھوڑا ٹائم ایکانت میں بیٹھ کے یہ وچار کرے کہ میں کیا ہوں کون ہوں مجھے کس نے پیدا کیا میرا فرض کیا ہے مولا فرمایا ہر روز نہیں بنتا تو 8 دن میں ایک دفعہ ضرور سوچا کرو مولا فرمایا اگر 8 دن میں نہیں بنتا تو 15 دن میں ضرور ایک دفعہ بیٹھ کے اپنی زندگی کا خیال کرو اے دن دارو کوئی آدمی کولسے کی کوٹھڑی میں جاوے اور سفید سوٹ پہنا ہوئے کہیں نہ کہیں داغ لگے گا شراب خانے کے اندر جاوے شراب نہیں پیے تو شراب کی بو باس تو آئے گی کل جو کا زمانہ ہے گناہوں سے بھرا ہوا ہے مومن کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے کہ میں ایسا کام نہ کروں کہ جو میرے دین کے ورد ہے میں ایسا کام نہ کروں کہ میرے مولا کو ناراض ہو جانے کی ضرورت پڑے یہ دنیا کسی کی نہیں بنے نہ راجہ کی نہ رانک کی رانک کہتے ہیں بھکاری کو اور یہ یاد رکھو کہ دنیا میں ایسا ایک بھی آدمی نہیں کہ جس نے ساری زندگی سکھ کی گزاری ہوئے کچھ نہ کچھ دکھ انسان کے پیچھے لگا ہے میں اپنی آوازوں میں بہت دفعہ کہا کرتا ہوں کہ دیندارو آج کے زمانے کے اندر انسان کی جو نارمل لائف ہے اس میں 99% پرابلمس ہیں 99% جو ہی بچہ سمجھدار ہوتا ہے 1.5-2 برس کے اندر اس کو تھوڑی سمجھ آتی ہے اس کی پرابلمز شروع ہوتی ہیں اور اس کی پرابلمز کیا ہیں ٹوائز ہیں گیم ہے کھانا پینا ہے کپڑے ہیں اور ساری زندگی انسان کو پرابلمز ملتی رہتی ہے 1% 1% سکھ اور شانتی کا ہے جو ہم اپنی عبادت اور مذہب میں سے نکالتے ہیں اے مومنوں یہ جو 99% پرابلمز ہیں یہ مٹنے والی نہیں تھوڑی کم ہو جائیں گی 1% مذہب کو اتنا کھینچو कि सारी प्रॉब्लम्स उसके नीचे आ जाए। और ये जो मजहब है वो हमारे भलाई के लिए आया है। कभी कभी मैं वाजों में पूछा करता हूं मजहब की जरूरत क्या, मैं ये भी पूछा करता हूं कभी कभी कि आपको जितनी आपकी उम्र है 20 बरस 25 बरस 50 बरस 70 बरस 80 बरस आपकी उम्र जितनी इस मजहब में निकली आपको क्या मिला। 60 बरस का आदमी है उसको पूछता हूं कि 60 बरस तुझे हुए इस दुनिया में मजहब में क्या मिला। 10-15 बरस के बच्चों को तो शायद इतनी अकल नहीं है, लेकिन 20-25 बरस से इंसान को खुदा ताला ने जो सोच विचार का मादा दिया है उसमें कभी सोचा है कि मुझे इस मजहब में से मिला कुछ? और अगर नहीं मिला तो क्या मेरी जिंदगी बेफायदा गई? पहली चीज ये सोचो कि मजहब क्या है। आप फर्नीचर देख लेने जाओ और उसमें एक रेफ्रिजरेटर खरीदो $1,200 का एक फ्रिज खरीदो, उसकी वारंटी मिलती है और फिर उसकी बुक मिलती है कि इसको किस तरह हैंडल करना। कोई भी मशीनरी खरीदो, टीवी ले लो, रेडियो ले लो, कोई और कोई ऐसे चीजें ले लो, तो उसके साथ एक उसका पैम्फलेट होता है, ब्रोशर होता है, उसमें लिखा होता है हाउ टू यूज इट। 110 वोल्ट की उसमें एनर्जी चाहिए, इतने उसके एम्पियरेज हैं, पहले ये स्विच करो फिर इस तरह करो, ये सारी चीजें वो पैम्फलेट में लिखी होती हैं। अगर उस पाए मुताबिक नहीं चले तो वो मशीन खराब हो जाएगी। खुदा ताला ने इंसान को पैदा किया तो उसको समझाने वाले गुरु भी साथ भेजे, और वो गुरु जो थे वो नबी थे। 1,24,000 124,000 प्रॉफिट्स, 124,000। ऐसा कभी कभी हुआ है कि दो दो तीन तीन प्रॉफिट्स एट ए टाइम होते हैं, कोई इधर हुआ कोई उधर हुआ, लेकिन अल्लाह कहता है कि कोई कंट्री कोई नेशन मैंने बाकी नहीं छोड़ी कि जहां मेरा प्रॉफिट नहीं गया। ये गुरु जो थे हमारी इंसानी जिंदगी के गाइड थे। क्या खाओ तो क्या बने, क्या ना खाओ तो क्या बने, जिस तरह फूड के अंदर ये है, इसी तरह से हमारे सोच विचार के अंदर, हमारी अक्ल के अंदर, हमारी इंटेलिजेंस के अंदर किस तरह से हम अपनी लाइफ गुजारें कि मुझे गम ना मिले, सुख और शांति मिले। हमारे एक बहुत बड़े इस्माइली दाई भी थे और वो हकीम भी थे, फिजिशियन था, उसका नाम था अबू अली सीना, एविसीना इंग्लिश में कहते हैं, उसको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। पेरिस के भी जाओ तो ब्रबोन यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के अंदर उसका बुत लगा हुआ है, फादर ऑफ मेडिसिन एविसीना। 33 बरस की उम्र में गुजर गया, लेकिन 111 किताबें लिखी उसने। इस उम्र में उसको लुकमान कहते थे, बहुत बड़ा आलिम हकीम था, और उसकी बातें सुन के इंसान को बहुत कुछ सीखना मिलता है। इस्माइली था। एक आदमी उसके पास आया, कहता शेख पेट दुखता है, नब्स देखी, क्या खाया? रोटी खाई। घी वाली? कहते नहीं, तनूर में पकी हुई थी लेकिन जरा जल गई थी। नौकर को कहा सुरमा लेके आओ, सुरमा आया तो उसको कहा कि आंखों में सुरमा डालो। कहते शेख पेट दुखता है कहता हाँ पहले मैं उसकी दवा करूं कि जिसके कारण से तेरा पेट दुखता है। तू देख रहा है कि ये जली हुई है फिर भी खा रहा है तो तेरी आंखों का कसूर है, इसलिए पहले सुरमा डालो। आप समझे इसमें से कुछ? हर एक्शन का एक रिएक्शन है, और अगर हम अपनी जीभ के स्वाद की खातिर या अपने लालच की खातिर या कोई बेवकूफी के कारण से हम कोई ऐसा काम कर लेते हैं कि बाद में पछताते हैं। खाने पीने के अंदर भी ऐसी चीजें हैं कि जो दो चीजें एक दूसरे से मिलती नहीं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको खाली बताना चाहता हूं ताकि हमें समझ आवे। छाछ पी रहे हो खाते वक्त तो खट्टी चीजें मत खाओ। छाछ पीनी है, दही खाना है तो उसके साथ नींबू अथना चटनी अचार इमली मत खाओ, लिवर खराब हो जाएगा। इसी तरह से हमारे मजहब के अंदर है, रूहानियत चाहिए तो रूहानियत के उसूल कायदे जुदे हैं। मजहब में आगे बढ़ना है तो उसके लिए फी दो, यानी उसके लिए कुर्बानी करो। अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो 7 बरस उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए तब जाके डॉक्टर बने। इंजीनियर बनना है तो 5 बरस का कोर्स है, अकाउंटेंट बनना है तो 4 बरस का अकाउंट है। इसी तरह से हर शय का एक ड्यूरेशन है। कोई ऐसे कोर्सेज हैं कि 6 महीने में आ जाते हैं, कोई ऐसे कोर्सेज हैं कि 10 बरस लगते हैं। मजहब हमको मिला है हमारी भलाई के लिए। खुदा ताला ने गुरु साथ भेजे, इन नबियों ने हमको हमारे जीवन गुजारने की सब चीजें हिदायतें की। नबियों ने खाने पीने की बातें की, कपड़े लत्ते की बातें की, फैमिली की बातें की, बिजनेस की बातें की, सोसाइटी की बातें की, और आकाबत के लिए क्या अच्छा है उसकी बातें की। मगर ये याद दिलाते रहे कि देखो बेटा तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो तो हमेशा के लिए तो नहीं आए ना, 5 बरस 7 बरस। ये दुनिया जो है वह यूनिवर्सिटी है। इधर कोई आदमी 10 बरस जीता है, कोई 100 बरस जीता है, लेकिन आखिर मर जाता है। और मौत एक ऐसी चीज है कि वो लोग जो खुदा को नहीं मानते मौत को मानते हैं। उसको पूछो खुदा है तो बोला आई डोंट बिलीव इन गॉड। आर यू गोइंग टू डाई वन डे? ऑफ कोर्स एवरीवन हैज टू डाई। ओह, मौत से कोई इनकार नहीं कर सकता। 1962 में मैं अपनी वाइफ के साथ उजुम्बुरा से कैरो गया। मैं वर्ल्ड ट्रिप के ऊपर जा रहा था, बेल्जियन एयरलाइन थी। शाम को 4:30 बजे हम उठे, घंटे डेढ़ घंटे के बाद डार्क हो गया और उन्होंने अनाउंस किया कि हमको डिनर देंगे। उस वक्त वो जो DC-8 ये प्लेन था छोटा था, 2 सीटें इस तरफ थी, 2 इस तरफ थी, बीच में पैसेज था एल। हम दोनों जब अनाउंसमेंट हुई, डार्क भी हो गया, हमने अपनी तस्बीहें निकाली और हमने दुआ पढ़ी। टाइम और भी था, दूसरी दुआ भी पढ़ ली, 1-2 तस्बीहें निकाली। डिनर आया, हम डिनर खाने लगे। डिनर पूरा हुआ, मेरी लेफ्ट साइड में आइल के उस तरफ एक आदमी हमको ऐसा करके देख रहा था, वॉच कर रहा था। राहत हुई तो कहते एक्सक्यूज मी सर, बोला यस। आर यू प्रेइंग? बोला यस। डू यू बिलीव इन गॉड? यस। आई डोंट बिलीव इन गॉड। आई सेड वेल इट इज योर ओपिनियन। अब वो मेरे मुंह में उंगली डाल रहा था कि मैं कुछ बोलूं, और मेरे हाथ में तस्बीह थी, मैं अवॉइड करना चाहता था, लेकिन मुझे कहता है कि डू यू रियली थिंक देर इज गॉड? मौलाना इमाम जाफर सादिक मुझे याद आ गए। मौलाना امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتا اس کے ساتھ کبھی بھی خدا کی ڈسکشن مت کرو. وہ خدا کو نہیں مانتا تو تیرے کو کیا مانے گا؟ تو اس حساب سے میں اوائڈ کر رہا تھا, مگر مجھے پوچھنے لگا کہ ڈو یو ریئلی تھنک دیٹ گاڈ از دیئر؟ اب میں جان چھوڑانا چاہتا تھا. میں نے کہا آر یو گوئنگ ٹو ڈائی ون ڈے؟ مجھے کہتا آف کورس ایوری ون ہیز ٹو ڈائی. اتنا ایمان تو ہے کہ موت کے اوپر اس کو یقین ہے. یہ یقین خدا کا یقین ہے. میں نے کہا آر یو گوئنگ ٹو ڈائی ون ڈے؟ آف کورس. میں نے کہا یو ڈونٹ بلیو ان گاڈ؟ نو. You don't believe now in God, but after death you find there was God, you had it. But if you believe in Him and after death you find that there was no God, you don't lose anything. Serious ho gaya. Aaj Khuda ko maan lo اور موت کے بعد پتہ لگے کہ خدا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کوئی نقصان نہیں. لیکن آج خدا کو نہ مانو اور موت کے بعد جب خدا کے سامنے جاؤ گے تو وہ تو پیٹے گا. چپ ہو گیا, ڈیپ تھنکنگ میں پڑ گیا. 15-20 منٹ کے بعد مجھے کہتا ہے ایکسکیوز می سر, you are perfectly right sir, and I made a mistake. I think God must be worshipped. خدا کی عبادت کرنی چاہیے. خدا ہے. جو نہیں مانتے وہ نقصان میں ہے, جو نہیں مانتے وہ نقصان میں ہے. میں نے ایک لیکچر دیا تھا ساؤتھ افریقہ کی وٹ واٹر اسٹینڈ یونیورسٹی میں, جوہانسبرگ کے. میں نے ان کو کہا کہ جو بیلیف ہے انسان کا خدا کے اندر وہ اس کو بڑا مدد کرتا ہے, اور وہ مدد اس طرح سے کرتا ہے کہ انسان جو خدا کو مانتا ہے اپنے دکھ میں اس کی مدد چاہتا ہے. اے مولا, اے خدایا, او گاڈ, او اللہ, او ایشور, وٹ ایور یور فیتھ از, میری مدد کر, میری مدد کر, پلیز ہیلپ می. تو اس کے اندر جو سائیکالوجی ہے اس کو ایک آشا ہوتی ہے کہ خدا میری مدد کرے گا. لیکن جو آدمی نہیں مانتا وہ کس کی مدد مانگے؟ کسی کی بھی نہیں. وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے, اندر اندر مونجھاتا ہے, کس کو جا کے کہے کہ میری ہیلپ کر. ایمان جو ہے وہ انسان کو ہیلپ فل ہوتا ہے, اور جہاں ایمان نہیں وہاں پیر کہتے ہیں اندھیرا ہے, اور حقیقتاً اندھیرا ہے. خدا تعالیٰ ہر اپنے بندے کی مدد کرتا ہے, رحمت کرتا ہے, روزی دیتا ہے. اس میں ساری دنیا کے مذہبوں کو اکٹھا کرو, اور میرے مولا کا کرم ہے دیندارو, میں اپنی عمر کے اندر دنیا کا کوئی ایسا مذہب باقی نہیں کہ جس کی سٹڈی نہیں کی. میں ان مذہبوں کو اس لیے پڑھتا رہا کہ میرا مذہب ان کے سامنے کیا ہے. میرے ہاتھ میں جو ہیرا ہے وہ ان دوسرے ہیروں کے سامنے یا کانچ کے سامنے کیا قیمت رکھتا ہے؟ اور ہر دفعہ مجھے خوشی ہوتی ہے. میرے مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں ہے. دنیا اور دین کے اندر اس میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں. ایک ایسا مذہب باقی رہ گیا تھا جس کو ہم شنٹوئزم کہتے ہیں جاپان میں. وہ جاپان کے راجا کو خدا کا اوتار مانتے تھے. میں 63 میں جاپان گیا شنٹو مذہب جاننے کے لیے. اس کی مجھے کہیں بھی لٹریچر کتابیں انگلش میں یا کوئی زبان میں نہ مل سکے, لیکن شنٹو مذہب جا کے مجھے اور بھی خوشی ہوئی کہ ہمارا مذہب تو ہمارا مذہب ہے، ہمارے مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں، ہمارا دین اسلام ہے، مذہب اسماعیلی ہے. کیا فرق ہوا دین اور مذہب میں؟ دین کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے جو ہمارے لیے قانون بنایا وہ اس کو دین کہتے ہیں، اور مذہب کا مطلب یہ ہے اس پہ چلنے کا رستہ. سنی مذہب ہے، شیعہ مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، یہ سب مذہب ہیں. دین اسلام ہے، اور اس دین کے اندر 73 سیکشنز ہیں کہ جو اپنے اپنے طریقے سے اپنے مذہب اپنے دین کے اوپر عمل کرتے ہیں. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسماعیلی اپنے اندر ایک بیٹھے ہوئے خدا کے نور کو جس کو ہم ایمان کہتے ہیں ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں. سارے جتنے بھی 72 دوسرے فرقے ہیں اسلام کے اندر ان میں کوئی بھی امام نہیں ہے، عام ملا مولوی بہت ہیں، قاضی ملا بہت ہیں، لیکن وہ ملا بھی ہماری طرح کے انسان ہیں. ہمارے اندر ایک ہی اسماعیلی مذہب ہے دین اسلام میں کہ جس میں خدا کا نور پرتک بیٹھا ہوا. پرتک مینس ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، اپنی باتیں سناتے ہیں. یہ 1-to-1 بیسس کے اندر یہ جو ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر ہے کہیں نہیں ہے. کچھ بھی ہمیں دنیا یا دین کی دوروانی گائیڈنس چاہیے تو مولا ہمارے اوپر بیٹھا ہے. اے مومنوں، دسمبر 1964 میں اسماعیلی ایسوسی ایشن ورلڈ کانفرنس تھی کراچی میں. حضرت امام کے 2 دن باقی تھے اس کے پروگرام کے، تو ماں باپ نے وہ پروگرام توڑ کے اسٹریٹ بھاگ کے ساتھ یعنی اڑ کے نیروبی آئے. میں اس وقت دار السلام میں رہتا تھا، 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے. مولا آوے تو ہم رہ نہ سکے، میں بھی نیروبی آیا، دیدار کیا، مولا سے ملے. ابھی بات کیا بنی تھی کہ اس وقت افریقن تھوڑے ٹائم پہلے ہی آزاد ہوئے اور ایشین لوگوں کے مس بیہیویئر کے کارن جو افریقن تھے ان کے دلوں میں ایشین کے لیے ہیٹرڈ پیدا ہوئی، تھوڑی بہت لوٹ پھاٹ بھی ہوئی، اور اس میں ایشین کا قصور بھی تھا. بہت ٹینشن پیدا ہو گئی، ایسا لگتا تھا کہ ملک چھوڑ کے جانا پڑے گا. یہ 64 کی بات کرتا ہوں. جماعت بے حساب آئی، آجو باجو ارد گرد کے لوگ بھی ادھر آئے. نیروبی کا درخانہ ایسا ہے، ادھر سینٹر میں کھڑے رہو تو اس طرف جاتا ہے، اس طرف یعنی رائٹ اینگل ہے، اس طرف عورتیں بیٹھتی ہیں، اس طرف مرد بیٹھتے ہیں، پیک جماعت خانہ اوپر نیچے. دھنی ماں باپ آیا، مکھی نے چین پہنایا، کمڑیا نے بوکے دیا، دعا شیش ملی، قرآن کی تلاوت ہوئی، گنان شریف پڑھا گیا. اب مولا کھڑا ہوا فرمان کرنے کے لیے. چین پہنا تھا تو انگلی سے چین کو ایسا ایسا کھیل رہے تھے اس سے. یہ نشانی کیا تھی؟ خوشی کی نشانی تھی. مائک پکڑا، مائی ڈیئر اسپرچل چلڈرن، خالہ ودان دیا، دعا سیس دی. پھر مولا فرماتے ہیں یہاں کی ٹینس سچویشن کے کارن اور تمہاری گھبراہٹ اور چنتا کے کارن میں نے کراچی کا 2 دن اپنا پروگرام چھوڑ دیا، کٹ کیا، میں ادھر آیا ہوں تمہارے پاس، کوئی فکر مت کرو. کیا تسلی ہے मौला कहता है डोंट वरी, आई विल लुक आफ्टर यू। है कोई दुनिया में ऐसा? मौला कहता है फिक्र मत करो, मैं ही बैठा हूं तुम्हारी चिंता करूंगा। जमात राहत में आ गए। माँ बाप कहते हैं अगर जरूरत पड़ी देश को छोड़ने की, मैं बंदोबस्त करूंगा। कभी जरूरत पड़ी आई विल ब्रिंग 100 एरोप्लेन्स टू टेक यू अवे, एंड यू नो दैट आई एम कैपेबल। जरूरत पड़ेगी तो मैं 100 एरोप्लेन लेके आऊंगा, तुम सबको ले जाऊंगा, और तुमको पता है कि मैं कर सकता हूं। बताओ मुझे ऐसा है कोई दुनिया में गुरु के जो अपने मुरीदों को यह कह सके मैं बैठा हूं तुम्हारी चिंता मैं करूंगा, तुम्हारे गम दुख मैं ले लेता हूं, जरूरत पड़ेगी तो मैं फ्लीट लेके आऊंगा एरोप्लेन का, तुमको ले जाऊंगा। शांति हो गई, चेहरों का गम निकल गया, दिल का दर्द मिट गया, स्टेबिलिटी आ गई जमात के अंदर, हालत ठीक हो गई। ये 1964 की बात है। 1972 में कितने बरस के बाद? 18 बरस के बाद, आठ बरस के बाद 1972 में एक उधर रावण पैदा हुआ। रावण? हाँ, कद भी रावण जैसा था और पर्सनैलिटी भी रावण जैसी थी। ईदी अमीन युगांडा में रावण पैदा हुआ, सब एशियनों को उसने बहुत दुख दिया। उसने कहा कि यहां से 6 महीने के अंदर एशियन लोग मुल्क को खाली करो। पैसे वाले इमीजिएटली भाग गए, लोग रह गए। जमात में थोड़ा कोमोशन हुआ। क्या हुआ पता है? कुछ जमात जो रह गई, मौलाना हाजर इमाम ने सर इबू को हुक्म किया, एरोप्लेन लेके सर इबू नैरोबी से कंपाला गए और अपनी जमात को उसमें प्लेन में बिठाया। नैरोबी लेके आए, दूसरी फ्लाइट की, तीसरी फ्लाइट के अंदर बहुत थोड़े आदमी बाकी थे और जगह अंदर काफी थी, तो उधर एयरपोर्ट के ऊपर हिंदू औरतें मर्द हाथ जोड़ के भीख मांगते थे, अमोने ले जाओ, अमोने ले जाओ, और ले लिया। सरीबू ने उनको भी ले लिया। 8 बरस पहले किया हुआ वादा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं प्लेन भेजूंगा, तुमको उठा ले जाऊंगा, और उठा के ले गया। कनाडा आया, कोई लंदन रह गया, कोई अमेरिका आया, कई लोग लुट फुट के आए, कुछ थोड़े लोग थे कि जिन्हों का पैसा बाहर था। 1972 के बाद आज इस बात को ख्याल करो तो 32 ईयर्स हुए। वो लूटे फूटे ईदी अमीन के निकाले हुए युगांडन इस्माइली आज इधर मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, मिलियन डॉलर के मकान में रहते हैं। सब ऐसे नहीं है, लेकिन छोटा से छोटा आदमी उसके पास भी मकान है, गाड़ी है। आज आप लोग यहां बैठे हुए हो, आपका जन्म इधर तो नहीं हुआ, सिवा चंद बच्चों के। बाप दादा काठियावाड़ी थे, कच्छी थे, गुजराती थे। बाप दादा के पास खाना पीना नहीं था, हमारे बाप दादा परदादा के पास खाना पीना नहीं था। हमारी उस वक्त की जो नानियां दादियां थी वो गाय बकरी का, गाय भैंस का छेन सुखा के बर्तन के तौर पे यूज करते थे, कोलसे के पैसे नहीं थे। जो शरीर पे कपड़ा था वही कपड़ा था, उसी में नहा के नचोड़ लेते थे, खेती करते थे, भैंस का दूध बेचते थे, मजूरी करते थे। आज से 4-5 पीढ़ी पहले, 100-150 बरस पहले मौलाना हसन अली शाह के टाइम के अंदर हमारी हालत यह थी, वजीर इस्माइल खानजी के साथ शाह पीर अली शाह माँ बाप और हसन अली शाह माँ बाप घोड़े पे बैठे हैं और जमात के अमरदार पांव से चल रहे हैं। जूनागढ़ के गांव के बाहर निकले तो बहुत सी औरतें गाय भैंस का छेन इकट्ठा कर रही थी। जब मौला के घोड़े देखे तो सबने मुंह फिरा लिया। हसन अली शाह माँ बाप ईरान से थे, उनको बहुत बुरा लगा। इस्माइल, जी सरकार, ये कैसी औरतें हैं? कहते मौला, ये तेरी बच्चियां हैं। क्या कहते हो, ये लोग मेरे मुरीद हैं? तो फिर इन्होंने मुंह क्यों फिराया? कहते मौला, इनके हाथ गंदे हैं, गाय का भैंस का छेन यानी इकट्ठा कर रही है, इस गंदी सूरत में उन्होंने मुंह फिरा लिया कि क्या मुंह दिखाए। माँ बाप घोड़े पे बैठा बैठा मुंह नीचा कर लिया, आंखों से आंसू निकले। इस्माइल जी साहब, वापस चलो। वापस आ गए। शाम तक कोई बात नहीं की, खाना नहीं खाया। शाम को जमात खाने आए, वजीर इस्माइल हाथ बांधे खड़ा है, जमात को मिले, दुआ सीस्ती। वजीर को कहते हैं, मुझे सबके घरों में जाना है। नहीं या मौला, ये प्रोग्राम नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? मौला, उनके घर है ही नहीं तो कैसे रहते हैं? मिट्टी की झोपड़ियां बनाई हैं और ऊपर पत्तों की छत है, जमीन पे सोते हैं, घर है ही नहीं, तू जाएगा किधर? हमको जाना है। वजीर, मैं जाऊंगा। पर मौला, उनके घर में कोई शीश नहीं, बैठने की भी नहीं, मैं ये जाना है, बंदोबस्त करो। अच्छा, धनी ये भी इस बात के ऊपर अड़ा हुआ कि मुझे हर घर में जाना है। मुखी कमरिया ने सबको कहा कि मौला तुम्हारे घरों में आऊंगे। किसकी ताकत है? ये चीज सुन के खुशी भी होवे और रोवे भी। खुशी ये कि मेरा मौला घर पे आता है, और रोना इसलिए है कि घर घर जैसा है ही नहीं। शाह पीर दोनों, मुखी कमरिया, वजीर इस्माइल घर में जाते हैं, नम के जाते हैं। इतना तो दरवाजा है, अंदर बैठने की कोई चीज नहीं। मौला अली शाह, मौलाना सुल्तान अपने सॉरी मौलाना हसन अली शाह माँ बाप शाही दबदबे में है, नूरी जामे में है, जमाने के इमाम है, दीनो दुनिया का बादशाह, और झोपड़े में खड़ा है, लोग पांव में बैठे हैं, दुआ शीश दी, हमको कुछ खिलाओ। ओहो, हांजे गगड़ गए, हमको कुछ खिलाओ। बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं, तेरे को क्या खिलावे, हमको कुछ खिलाओ। वजीर कहता है गुजराती में कि कुछ भी आटा, अनाज, चावल, बाजरा कुछ भी है थोड़ा सा लेके आओ। कच्चे चावल लेके आए, कच्चे चावल एक छोटी सी प्लेट में लेके आए। मौला ने उसमें से दो दाने मुंह में डाले। अली शाह माँ बाप ने खाए, दुआ दी, बहुत बरकत होगी। दूसरे घर में गए, उसको न्यूज मिल चुकी थी, थोड़ा सा बाजरा ले आए, किसी के घर में आटा था तो आटे की चुटकी मुंह में डाली। सबके घरों में जाके कच्चे चावल खाए, बाजरी कच्ची खाई, गेहूं कच्चा खाया, आटा कच्चा खाया, लेकिन सबके घर में गया। उनकी औलाद हम सब बैठे हैं यहां, ये उनकी औलाद है कि जिनके दादा परदादा ने कच्चे चावल खाए। ऐसा मजहब दुनिया में कहीं नहीं। उसकी दुआ आशीष ने आस्ता 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 बरकत देनी शुरू की, धंधे मिले। फिर ये बात है 1844-45 की, 25 बरस बाद 1870 में 1877 के साल में मौलाना हसन अली शाह और पीर अली शाह कच्छ गए। जैसी काठियावाड़ के अंदर गरीबी और जलालत की हालत थी जमात की, ऐसी ही खराब हालत कच्छ में थी। और काठियावाड़ में अच्छा है बहुत कुछ, लेकिन कच्छ तो रण ही रण है। हसन अली शाह माँ बाप कहते हैं, मेरे बच्चों तुम में जो जवान लोग हैं ना, अफ्रीका जाओ। फिर तो मौला चले आए बॉम्बे में, दो चार महीने के बाद 40 इस्माइली, उसमें एक 12 बरस का लड़का था। ये लोगों ने एक धो यानी उसमें स्टीमर नहीं होती, वो हवा से चलते हैं। इस ढो के अंदर बॉम्बे आए और कैप्टन ने कहा कि खाना पीना अपना ले लो, जो कुछ भी, यहाँ से हम जब भी जाएंगे तो जंजीबार तक शायद एक महीना लगे। गांव में आए, पता लगा कि हसन अली शाह माँ बाप आज दीदार देते हैं। सबको दूर को बुलाया और इन सब ने वाड़ी में जाके दीदार किया। मौला ने देखा कि ये कच्ची लोग आए हैं, नजदीक बुलाया, बातें पूछी कि मौला हम जंजीबार जाते हैं। इतना खुश हुआ मौला, हसन अली शाह माँ बाप इतना राजी हुआ, बहुत दुआएं दी और फरमाया जब ही वहां पहुंचो तो मुखी को मेरा मैसेज देना कि शाम की दुआ जो हम पहली दुआ पढ़ते हैं उसके बाद 4 तस्बीहां निकाला करो, या अल्लाह, या वहाब, या अली, अल्लाहु समद। मुखी को कहना मेरा फरमान है 4 तस्बीहां दुआ के बाद निकाला करो, दिनों दुनिया में तुम्हारी आबादी होगी। ये लोग आए, मुखी ने तस्बीहां चालू की, 1870 में ये तस्बीहां चालू की, लेकिन 1905 में शाह सुल्तान मोहम्मद ने फरमान किया कि आज से ये तस्बीह शाम की दुआ के बाद नहीं, सुबह की दुआ के बाद पढ़ा करो। और आज हम 1905 से 99 ईयर्स हुए, हम ये तस्बीहां सुबह की दुआ के बाद पढ़ते हैं। इन तस्बीहों में अफ्रीका की जमात चढ़ती रही चढ़ती रही, और इस 100 वर्ष के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान की दूसरी जमातों से अफ्रीका की जमात ज्यादा एडवांस रही, एजुकेशन में भी मजहब में भी। मैं ये हिस्ट्री इसलिए सुना रहा हूं कि आपको पता लगे कि हमारा जो मालिक है वो रियली सच्चा मालिक है, दुनिया में भी हमारा हाथ पकड़ता है और आखिरत में भी हाथ पकड़ने का वादा किया है। 1945 में मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह मुंबासा आए, मुंबासा मुसलमानों ने साहब को एक रिसेप्शन दी। एक बड़ा सिनेमा था, वो सिनेमा के हॉल में कुछ लगभग 1200 जितने मुसलमान इकट्ठे हुए, इस्माइली भी थे, लीडर्स थे, अरब थे, मस्कती थे, इसनाशरी थे, सुन्नी थे, वहाबी थे, मुसलमानों के तमाम सेक्शन थे उधर। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह कहते हैं बिगिनिंग उसी इस तरह है कि इस्लाम ये कहता है कि हम मरने के बाद अकाउंटेबल हैं, खुदा हमारा हिसाब मांगेगा। सब ने हाँ की। खुदा तुमसे पूछेगा कि तुमने इस्लाम के लिए क्या किया, तो तुम क्या जवाब दोगे? सब की गर्दन नीचे। सुल्तान मशा सेकंड टाइम रिपीट किया, मरने के बाद खुदा पूछेगा कि तुमने इस्लाम के लिए क्या किया, कोई ना बोला। तीसरी दफा फरमाते हैं कि जो इस्माइली लोग हैं उनकी तरफ से मैं जवाब दूंगा, तुम लोग क्या कहोगे? है किसी की ताकत ये कहे कि इनकी तरफ एक दो इस्माइली नहीं, लाखों करोड़ों इस्माइलियों की तरफ से मैं जवाब दूंगा? किसी की ताकत नहीं थी। सुन्नी शिया इसनाशरी मौलवी मुल्ला मौल सब लोग थे, क्रीम थी मुसलमान कौम की। उसमें ये कहता है कि मैं इस्माइलियों की तरफ से मैं जवाब दूंगा, तुम क्या कहोगे? कोई की जबान नहीं खुली। ये हमारे लिए बैठा है और वो सच्चा है। 1400 बरस से यही कहता चला आता है, मैं होल्डर ऑफ नूर इमामत हूं, अली नबी का मैं वारसदार हूं। 1400 बरस से चला, 1400 बरस तक झूठ नहीं चलता। इस 1400 बरस में 32 लोगों ने इजिप्ट में, सूडान में, मोरक्को में, अरबस्तान में, ईरान में, रसूलुल्लाह के बाद 32 लोगों ने इमामत का दावा किया, एक दो ने तो नबूवत का दावा किया। आज उनकी नस्ल भी मिलती नहीं, कोई बाल बच्चा भी मिलता नहीं, खाक हो गए, बर्बाद हो गए, जल उनके पूरे हो गए, किसी की नहीं चली। लेकिन ये 1400 साल से कहता है मैं इमाम हूं। एक दिन झूठ चले, एक महीना चले, एक बरस चले, 10 बरस चले, 100 बरस चले, 1400 बरस झूठ नहीं चल सकता, इसके बगैर और कोई नहीं, इसके बगैर कोई नहीं दीनदार। बोलो मेरे साथ पाठ बोलो, है जी तुझ बिना कोई अवरना, स्वामी अमन शाह माता सलामत के साथ कराची गए 51 में। उस वक्त जूना जमाना था खारा दर में दरखाना, उसके पीछे हैरिस रोड है। हैरिस रोड के उधर सामने की साइड में शामियाना बांधा जमात इधर आके बैठी। मुखी ने पूछा, खुदावंद शुरू करूं? हाँ, कुरान पढ़ा गया है। एक लड़की 8-9 बरस की है, उसका गिनान का वारा था। लड़की गिनान बोल रही है, साहेब जी तू मोरे मन भावे। जब भी उसने पाठ शुरू किया, मौला बैठे थे, लकड़ी ऐसा बैठी थी, लकड़ी के ऊपर ऐसा वो लकड़ी का हाथा है, उसके ऊपर ऐसा हाथ रख के मौला बैठे थे। लड़की बोल रही है, जय जय मांगू, वो लड़की बोल रही ना, तो सब ऐसा लकड़ी ऊपर करके नीचे करके ऊपर, अलबत् अलबत् जो मांगेगा हम देंगे। बहुत प्यार किया उसको, लेकिन वो बोल रही कि जे जे मांगू ते तू ही देवे, सब कहते अलबत् अलबत् जो मांगोगे देंगे, ऐसा मौला है। सतगुरु कह रहे सोना बेची साजन लीजिए, अनेरो रूपा केरे मोले, वैसा जन किम छोड़िए भाई लोका केरे बोले रे। ये साजन हम लोगों के कहने से इसको छोड़ देंगे? अरे नहीं, इसके लिए तो जान जाए भले जाए, जो जीव जावे शाह का नाम न छोड़ो, दर सिर करवत अंग न मोड़ो। हमारा मजहब जो है वो मोहब्बत और इश्क का मजहब है। हमारे मजहब की जो बेसिस है वो नूर है। कब नसीब है वो इस्माइली के जिसने अपने मजहब को जाना नहीं, समझा नहीं, वो भटकता है। हैं ऐसे इस्माइली, कोई हसन अली के पास जाते हैं, कोई फातिमा के पास जाते हैं, कोई सकीना के पास जाते हैं, इस धनी को छोड़ के कहा, इसकी मोहब्बत में मर जाए, इससे ज्यादा क्या चीज हो सकती है। अपने मजहब को पालो, अपने मजहब का स्वाद चखो। मैं अभी बोल के आया हूं कि मुंह में चॉकलेट जिस तरह डालते हो और आस्ते आस्ते चूसते रहते हो, उसका मजा आता है। दीनदारो, अपने मजहब को चॉकलेट की तरह चूस चूस के उसका स्वाद लो। इस मजहब में आपको हर चीज मिलेगी, लेकिन सच्चे बनो। डॉलर की मोहब्बत में इमाम की मोहब्बत को भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आधी रोटी खाओ लेकिन सुख की खाओ। वो पैसा किस काम का कि जो पैसा हमको दुख देगा? मैं बहुत दफा लोगों को कहता हूं कि हमारे गिनानों में कोई चीज बाकी नहीं रखी। ये सदर दिन कहते हैं, ते सोनो गोल्ड सूसु पेरिये जेने सोने त्रुठे कान। वो सोना के कानों की बालियां कान को दुख देवे, वो भी सदर दिन कहते हैं, ऐसा सोना किस काम का कि जेने सोने त्रुठे कान। वो डॉलर किस काम का कि जो हमको मौला से दूर कर देवे। ये मजहब प्रेम का मजहब है। इस मजहब के अंदर दुनिया मिलती है, लेकिन पहली चीज, ऊंचे में ऊंची चीज मौला की मोहब्बत और नूर है। अपनी रूहानी साइड को मजबूत करो, दुनिया में कभी दुखी नहीं बनोगे। लेकिन मजहब मजबूत होना चाहिए, हर जगह वो काम आएगा, हर जगह मदद करेगा। लोभ लालच मन मोह सो लगत है, दीन के रास टले। जब ये लालच मन में आ जाता है, मोह ममता पैदा हो जाती है, तो आदमी दीन से हट जाता है, फिर दुखी होता है। मैंने फिर ये कहा, रिपीट करके कहता हूं, आधी रोटी खाओ मगर सुख की खाओ। पैसे की मोहब्बत में अपना मजहब मत भूल जाओ। आपके अंदर इधर मैं जमात खाने में एंटर हुआ हूं, मुझे फीलिंग अच्छी नहीं आई। स्पिरिचुअली आप लोग कमजोर हो, हैं आपके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इबादत वाली बाइयां हैं, इबादत वाले मर्द हैं। मैं हिसाब करना नहीं चाहता और मैं कहना भी नहीं चाहता, लेकिन मेजॉरिटी आप लोग अपने मजहब के ऊपर मजबूत नहीं हो। ए मोमिनो, मैं आपको जगाने आया हूं, मैं आपको जगाने आया हूं, कल मैं एक बात करते करते रो पड़ा। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह कपूरथला आए 1945 में। कपूरथला पंजाब में एक सिख की स्टेट है और वो मौला का आशिक समझ लो ऐसा। डायमंड जुबली का टाइम था तो मौला को आजजी करके अपनी स्टेट में ले गया, कपूरथला स्टेट में गया। मौला ने जमात को कहा कि इधर आओ, 8-10 हजार इस्माइली जमात के, पंजाब जमात के, फ्रंटियर जमात के कपूरथला गए। राजा ने डोंडी पिटवाई, यानी अनाउंस कराया कि नामदार आगा खान के जो मुरीद हैं वो इधर उनके धर्म गुरु को मिलने आते हैं। ये ऐलान किया जाता है राजा की तरफ से कि वो आपकी दुकान के ऊपर से कुछ भी खाए पिए उनसे पैसे नहीं लेना, और उसका हिसाब आप राजा की तिजोरी में से, राजा कहता है वो पैसे मैं दूंगा। 10 हजार आदमी कहीं जावे, मेरे को लस्सी पीनी है, और खुशी से कितने पैसे, ये तो राजा की तरफ से 10 हजार आदमियों को राजा ने खाना खिलाया। मौला आए जमात में, बैठे हैं, यूं देख रहे हैं, एक एक की आंख में आंख मिला के मौला देख रहा है, बोला कुछ नहीं, चुप रहा। पहले आके दुआ आशीष दी, लेकिन बाद में मौला सबके साथ आंखें मिलाए। मुंह उदास हो गया। थोड़ी बार के बाद कहते हैं मौला, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, मेरा दिल चाहता है कि तुम एक एक को, अपने रूहानी बच्चे को एक एक को मैं अपनी गोद में बिठा के प्यार करूं। वो पड़ा, लेकिन क्या करूं, बूढ़ा हो गया हूं, ऐसा नहीं कर सकता। मेरा दिल चाहता है तुम एक एक को अपनी गोद में बिठा के प्यार करूं। ऐसा मौला किधर और नजर आता है आपको, वो हमें इतना प्यार करता है, उसके पास बेहिसाब पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के हिसाब से। नामना कितनी आगा खान की है, कोई चीज की कमी? फिर भी जमात के लिए इधर से उधर भागता है, उधर से इधर भागता है। नवा प्लेन लिया मौला ने, जो ना प्लेन था वो प्रिंस रहीम को दे दिया। अभी इधर से उधर, उधर से इधर, रात रात भर जागता है, क्या पड़ी है उसको, खाए पिए ऐश करे मजे करे, बेहिसाब पैसा, इतनी नाम ठान, लेकिन आगा खान सब घूम रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, नींद पूरी नहीं होती है। किसके लिए? रूहानी बच्चों के लिए। मौलाना हजर इमाम सिल्वर जुबली पूरी हुई, लीडर्स को मौला ने एक डिनर दिया। बातें निकलते निकलते 20 बरस की बात है, मौला कहते हैं इंशाल्लाह नॉर्थ अमेरिका में मेरे मुरीद बहुत मालदार बनेंगे, बहुत मालदार बनेंगे, लेकिन मुझे डर है मुझे भूल ना जाए। लानत एज ए पैसन, ए मौला वो पैसा हमें नहीं चाहिए कि जिस पैसे से हम तुझे भूल जाए। एक दिन आंख बंद हो जाएगी, जिस गाड़ियां रह जाएंगी, मिलियन डॉलर रह जाएगा, सब कुछ रह जाएगा, हाथ की अंगूठी होगी वो भी निकाल लेंगे, मिट्टी के अंदर मिला दिया जाएगा, मिट्टी में मिट्टी बड़ी जैसे। इस पैसे के लिए हम अपने हाजिर इमाम को भूल जाए? नहीं, नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा। कुछ कम बख्त बदनसीब हमारी जमात में हैं कि जो मजहब के विरुद्ध काम करते हैं। मैं दुआ करता हूँ या मौला उनके दिलों में भी नूर डाल दे, उनको अपनी भूल का प्रायश्चित करने की ताकत दे। या मौला अपने मुरीदों को दीनों दुनिया में अपने छत्र छाया में रख। मौला क्या चाहते हैं हमसे, कभी सोचा मौला हमसे क्या चाहते हैं? पैसा तो बेहिसाब है, पैसे तो देता है। अफ्रीका में, तंजानिया के अंदर 1200 शिलिंग का एक अमेरिकन डॉलर है। केनिया में 80 शिलिंग का एक डॉलर है। युगांडा में 2000 शिलिंग का एक अमेरिकन डॉलर है। 46 रुपीस इंडिया के एक डॉलर लाते हैं। पाकिस्तान के 50 रुपए का एक डॉलर है। ये जो कारसाजी मिलती है मुरीदों से, ये तंजानिया का शिलिंग क्या काम है? कितने डॉलर? 1200 डॉलर शिलिंग का एक डॉलर क्या करेगा? मौला खीसे से उधर पैसे देते हैं काउंसिलों को और दूसरी ग्रांट्स काम चलाने के लिए, रिपेयर के लिए जमात खाने बनते हैं, मौला के खीसे से पैसे जाते हैं। उसके पास पैसा बहुत है। हम उसको सुल्तान मशा के शब्द बोलू, मौलाना सुल्तान मशा फरमाया, सारे हिंदुस्तान की जितने भी कारसाजी तुम मुझे देते हो मेरे एक घंटे का खर्च है। एक घंटे का आज करोड़ों के हिसाब से ग्रांट दे रहा है हमको लाभ देने के लिए। हमारे अमेरिकन या कैनेडियन डॉलर हाजिर इमाम कबूल करता है और ये डॉलर उधर खर्च होते हैं हमको फायदा देने के लिए, और उसका बदला हमको मिलता है। इधर जमात बहुत बढ़ेगी, संख्या में इतनी नहीं बढ़ेगी लेकिन माल में बहुत बढ़ेगी। मालदार बनोगे, बहुत मालदार बनोगे। मगर याद रखो दीनदारों, एक आदमी चलते चलते गिर पड़े, थोड़ी चोट लगती है। बाइसिकल चलते चलते गिर पड़े तो ज्यादा चोट लगती है। मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़े तो हाथ पांव टूट जाते हैं। लेकिन एरोप्लेन के अंदर अगर एक्सीडेंट हो गया तो मामला गया, कब्र में चला गया। तो जैसे स्पीड बढ़ जाएगी तैसे एक्सीडेंट की चोट ज्यादा होगी। ये समझाने के लिए कह रहा हूं, जो जो दुनिया में आगे बढ़ोगे, मालदार बनोगे, पैसे वाले बनोगे, तो स्पीड बढ़ती जाएगी ना। जरा सी भूल में ऐसा एक्सीडेंट होगा, खाक सिया हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, वो पैसा कोई काम नहीं आएगा। हमारा जो मजहब है वो नेकी का मजहब है, रूहानी मजहब है, नूरानी मजहब है, ये फरिश्तों का मजहब है, ये नबियों का मजहब है। इस मजहब के हिसाब से चलो, दुनिया में भी बादशाह बनोगे, आखिरत में भी बादशाह बनोगे। और अल्लाह कहता है मैं अपने बंदों को दुनिया में भी गार्डन दूंगा और मौत के बाद भी गार्डन दूंगा। गार्डन का मतलब बहिश्त। फिर कहता हूं आधी रोटी खाओ, सुख की खाओ, रात को सो जाओ कोई हम गम नहीं। लेकिन लोभ लालच करके, बदी बुराई करके, ऊंधे धंधे करके, खराब रास्ते करके, झूठ बोल के, फरेब करके, दगा करके जो डॉलर कमाओगे वो डॉलर चमड़ी उतारेगा, चमड़ी। क्योंकि इस्माइली मजहब के अंदर सजा भी बहुत है। लेकिन अगर इमाम के फरमान के ऊपर चलते रहोगे, और इंशाल्लाह मौला करे आप चलो, मेरी दुआएं हैं, मैं उनको डरा रहा हूं कि जो थोड़े से चूहे की तरह जमात के अंदर है, ऊंदर की तरह छुप छुप के बदियां करते हैं, उनको कह रहा हूं। जमात तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है लेकिन राज करोगे। एक और बात साथ साथ कह दूं, और मैं कहता चला आया हूं, आज 5-6 साल से ये मिलेनियम आया नवा, तो मैंने पहली तारीख सन 2000 नॉर्थ के जमात खाने वैनकूवर में मैंने 1.25 घंटा जो वाज की थी, उसका थीम ये था कि ये मिलेनियम दुख वाला है, ये खास करके हमारी ये जो सदी है, ये सेंचुरी दुखों से भरी हुई है। अभी तो खाली 4 बरस हुए हैं, 96 साल बाकी हैं इस सेंचुरी के। इसमें गुना बढ़ते जाएंगे, धरती कम बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी, मन की अशांति बढ़ेगी, इस तरह से पागलपन बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, आसमान से बिजलियां गिरेगी, आग लगेगी, एपिडेमिक फैलेगी, बीमारी फैलेगी, भूखमरगा फैलेगा, बड़ी बड़ी आफतें आएंगी इस सेंचुरी के अंदर। फिर माँ बाप कहते हैं कि विखड़ी वेला में दिल ठोर नहीं रहते, ये विखड़ी वेला आ रही है, पापों से भरी हुई, दिन ब दिन पाप बढ़ते जाएंगे। इनमें एक छतरी है और वो छतरी जमात खाना है। जमात खाने आओ, कल युग की हवाओं, कल युग की खराबियों से बचे रहोगे। अपने औलाद को सिखाओ कि ये प्रोटेक्शन की जगह है, जमात खाने रहो सहो। जमात खाने आते वक्त कभी धंधा रोजगार बंद करना पड़ता है तो बंद करो। सिर्फ जॉब करने वालों को इमाम ने कहा है, ओके तुम्हारे सेठ की तो तुम तनख्वाह खाते हो तो भले, या वो बच्चे के जो शाम के वक्त इतने प्रेस्ड हैं अपने लेसन के अंदर, ओके, लेकिन खाने रोज आओ, रोज जमात खाने रोज आओ। कभी देर से आते हो तो देर से आओ, कोई बहुत सख्त काम है तो पहली दुआ पढ़ के चले जाओ, लेकिन जमात खाने आओ। इधर आके सजदा करो, उसको कहो मौला मैं आया हूँ, मेरा सलाम है, दिन और दुनिया में सुखी रहोगे, आबाद रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, मौला दीन में दुनिया में आपकी नियामतें देवे, रहमतें देवे, बरकतें देवे, आपकी हर नेकुमत पूरी करे, आपके दुश्मन दफा करे, मौला किसी का मोहताज ना करे, मौला दीन और दुनिया के अंदर आपका हाथ पकड़ के रखे, इस तरह रखे कि जैसे माँ की गोद में दूध पीता बच्चा बैठा है, इस तरह मौला आपको रखे, सुखी आबाद रहो।